الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا الخالق العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سامعین مسجد, اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعلیٰ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں, جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذکر کو بلند کرنا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نماز کا حکم دیا, جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو ادا کیجئے یہ میرا ذکر ہے. آپ نماز کی حقیقت کو سمجھیں, حقیقت کو جانیں, تو سب سے پہلی بات جو ہمیں نماز کے اندر پیش آتی ہے وہ مکمل پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے. جگہ بھی پاک ہو, انسان کا بدن بھی پاک ہو, اس کے کپڑے بھی پاک ہوں, کامل طہارت اس کو حاصل ہو, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض نماز کے اندر ضروری ہے. نوافل میں گنجائش ہے کہ ادھر ادھر منہ ہو تو نماز نفل کی پڑھ سکتے ہیں, مگر فرض نماز اگر ادا کرنی ہے تو جہت قبلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ مکمل پاکیزگی, طہارت اور جگہ, مکان, بدن کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, اور پھر نیت یہ ہو کہ میں اس فریضے کو اللہ جل شانہ کے لیے ادا کر رہا ہوں, اور ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا جو مقام ہے اس کو یاد کرے کہ اللہ اکبر کہے. یہ اللہ اکبر کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روئے زمین پر, پورے جہانوں پر, پورے کائنات میں کوئی ایسی شان نہیں رکھتا جو شان اللہ جل شانہ رکھتے. سب سے بڑے, سب سے بڑائی ہے ان کی. اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اب کسی دنیا کی چیز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہا, میں نے دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. اب یہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے کاموں کو میں نے چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیا. ہاتھوں کو باندھ کر زبان سے جو پہلا کلمہ ادا کیا وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم, اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. یہ سبحان کیا چیز ہے؟ ہم رکوع کے اندر بھی سبحان کہتے ہیں, ہم سجدے کے اندر بھی سبحان کہتے ہیں. ये सुभान क्या चीज है, ये जो आपने कहा सुभान, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उम्मत की रहनुमाई न की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, नमाज के अंदर पाकीज़गी और तहारत का ये मुकाम जो आपको हासिल हुआ है ये किस तरह है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी के घर के सामने नहर हो और वो उस नहर में 5 दफ़ा गोता जन होता हो, नहाता हो, हर दुर्नी ही बदनुम मिन शय, उसके बदन पर मैल कुचैल की कोई चीज़ रह जाएगी, तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको ये जो 5 नमाजें दी गई हैं जिसका सवाब तो तुम्हें 50 नमाजों का मिलेगा, मगर ये जो मुझे 5 नमाजें दी गई हैं ये उसी नहर की मानंद हैं जो तुम्हारे बदन को साफ करती है, ये तुम्हारे दिल को, दिमाग को, तुम्हारे जहन को, तुम्हारी तबीयत और मिजाज को साफ कर देती है। अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान पाक में फरमाया इन सलात तना अनिल फशाई वल मुनकर, नमाज जो है ये फवाहिशात और मुनकरात को रोकने वाली। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब इस्लाम नहीं लाए थे, आप तारीख उठाकर देखें, बल्कि अगर इस मजमे के अंदर सुनने वाली मेरी माएँ बहनें हैं उनके लिए भी अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान पाक के अंदर अजीब तरीके से हुक्म नाजल फरमाया। जो नहीं है आप अपनी बच्चियों को ये बात बताएं, अपने घर के अंदर ये बात बताएं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दौर के अंदर, ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ उलमा की जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करता हुआ आप हजरात से अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने खुसूसी तौर पर औरतों का जिक्र करते हुए फरमाया वकरना फी बियूतिकुन, के ऐ मस्तूरात, ऐ औरतों अपने घर के अंदर बैठो, वकरना फी बियूतिकुन वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, इस्लाम से पहले की जो जाहिलियत है उस जाहिलियत को इख्तियार ना करो, बिला वजह अपने घरों से इधर उधर ना निकलो, अपने घरों के अंदर बैठो, जाहिलियत की औरतों की तरह तुम शमा महफिल मत बनो, तुम चिरागे खाना हो। इस्लाम ने औरत को चिरागे खाना बनाया है, घर की रोशनी करार दिया है। जब हम बेरारो औरतों को देखेंगे, जब हम ऐसे, आप बरतानिया के अंदर हैं आप तो इस बात को समझ जाएंगे, बल्कि एक तबलीग वाले ने, तबलीगी भाई ने कहा कि जब आप बाजार में जाओगे तो कलमा पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत अबदन अबदा या ज़ल जलाली वल इकराम, तो अल्लाह जल्ल शानहू 80,000 में किया तुम्हारे नाम अमाल में लिखते। सवाल हो गया मौलाना साहब ये इतनी ने किया किस तरह, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि औरतों को हुक्म दिया वकरना फी बियूतिकुन वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियति लूला, जाहिलियत पहली जाहिलियत की तरह बाजारों में मत जाओ। आज आप देख रहे हैं मुसलमानों का क्या हाल है, मैं कुछ नहीं कहता मगर मैं कुरान की आयत को कोट कर रहा हूँ आपके सामने कि अपनी बेटियों को बताओ कि अल्लाह के कलाम ने मना किया है 23वें 22वें 22 के अंदर कि वकरना फी बियूतिकुन वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और क्या हुक्म दिया वअकीमनस्सला, तुम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ा करो, वआतीनज़्ज़का, अगर तुमको अल्लाह माल दे दे तो तुमने ज़कात भी देनी। ये औरतों को हुक्म है, मर्द तो मर्द होते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू ने औरतों के लिए ऐसा मकाम अता किया जो किसी मजहब किसी मिल्लत के पास नहीं है। लोग तो कहते हैं कि आज़ादी नस्वा होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि आज़ादी नस्वा तो होनी चाहिए मगर तहजीब इस्लाम की होनी चाहिए, तहजीब कुरान की होनी चाहिए। आज़ादी है घर में, औरत जो चाहे कर सकती है, उसका अपना घर है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि कपड़े भी उतार दो और कहो कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये क्या बात हुई, ये इदारा क्या इदारा है। हम कुरान को और हदीस को वो लोग समझते हैं जो मस्जिद के अंदर आते हैं, और ये उलमा की जिम्मेदारी है कि इस दौर के अंदर हम लोगों को बताएं कि दीन की अजमत, दीन की शान, औरत की अजमत, औरत की शान, ये कुरान से वाबस्ता है, हदीस से वाबस्ता है, दीन से वाबस्ता है। अगर आप दीन पर चलोगे तो अल्लाह जल्ल शानहु बरकात देंगे, आपके घरों के अंदर बरकतें आएंगी। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहु ने फरमाया वाकिमनस सलात व आतीनस ज़कात व अतियन अल्लाह व रसूला, तुमने इताअत करनी है अल्लाह और उसके रसूल की। और मर्दों को भी कहा अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, मुसलमानों को कहा अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। अब हमें देखना है हम कहाँ पर इताअत करते हैं और कहाँ पर नाफरमानी करते हैं, यह हर कोई देख सकता है, कहने की बात नहीं। अगर ये मौलवी साहब ये काम शुरू कर दें कि मस्जिदों के अंदर ये बताना शुरू कर दें कि आप ये नाफरमानी करते हैं, ये नाफरमानी करते हैं, हाँ जी, तो फिर ये माहौल सजेगा नहीं। हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर इस्लाम पर पूरे उतरते हैं, कहाँ पर हम कुरान पर पूरे उतरते हैं, कहाँ पर हमारी ईदें और नमाजें दुरुस्त हैं, कहाँ पर हमारे ख्यालात दुरुस्त हैं, कहाँ पर। देखने का मयार यही होना चाहिए कि कुरून उला के मुसलमानों ने, असहाब रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सीखा वो हमारे पेश नज़र होना चाहिए। उन्होंने किस तरह दीन की अजमत की, किस तरह की। एक सहाबी कुरान पढ़ रहे हैं अपने घर के अंदर, उनका नाम है अबू मूसा अशरी। अशर कबीला है यमन का, वहाँ से आए हैं, इस्लाम कबूल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दिन आए जिस दिन ग़ज़वा खैबर फतह हुआ था। ये 50 अपने कबीले के लोगों को लेकर मुशर्रब इस्लाम हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब आए अल्लाह के नबी के पास, खैबर से आया हुआ माल गनीमत था, तो इनके कबीले को बुलाया। ये क्योंकि हिजरत करके आए थे, अल्लाह के नबी ने कहा कि मुहाजिर अबू मूसा अशरी किधर है जो अपने कबीले को छोड़कर मदीना में आए हैं। तो उनको बुलाया, सारे कबीले को माल गनीमत से नवाजा। ये अबू मूसा अशरी वो है, ये कुरान पढ़ रहे हैं अपने घर के अंदर, ये हम भी कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी जिन पर कुरान नाजिल हुआ था, कुरान की अजमत, गुजार की शान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे जो सुन लेता था वो आपका गर्विदा हो जाता था। जो कुरान की एक आयत भी नबी के ज़बान से सुनता वो सुनकर अल्लाह के रसूल का गर्विदा हो जाता, इस्लाम कबूल कर लेता। अल्लाह के नबी जब कुरान पढ़ते, आप देखें जिब्राइल ने बराहे रास्त अल्लाह जल्ल शानहु से ये अल्लाह की किताब हमें दी, कब दी, रमज़ानुल मुबारक के अंदर, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हदायत वाली किताब हमें दी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ छोटी सी, वक़्त कम है, मुख्तसर बात करूँगा। रमज़ानुल मुबारक में कुरान को नाजिल किया, अल्लाह जल्ल शानहु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये मेरा जो ज़िक्र है मैंने आप पर नाजिल कर दिया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर है, मुझ पर है। किस पर है, ये नहीं कहा तुझ पर है, नबी को नहीं कहा, उम्मत पर है। क्या कहा, इसकी हिफाजत भी मैं खुद करूँगा। रमजान में नाजल किया, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, चला गया, गुजर गया, है जी। हम ईद के लिए जमा हैं, ईद की नमाज के लिए जमा हैं, आप कहेंगे ये खुशी कैसी। रमजान तो बरकतों वाला महीना था, आप नए कपड़े पहन के मस्जिद के अंदर आ गए, खुशियां मना रहे हैं, किस बात की खुशी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुशी इस बात की नहीं है कि रमजान गुजर गया, ये तो गमी है कि बरकतों और रहमतों वाला महीना गुजर गया, मगर खुशी इस बात की है कि जो रब करीम ने कुरान रमजान के अंदर दिया था, हम मुसलमानों ने इसका हक अदा कर दिया। हक अदा हुआ, लाखों हुफाज ने रमजान के अंदर कुरान को सुनाया, पूरी रूए जमीन पर पढ़ा गया और करोड़ों इंसानों ने इसको सुना है, करोड़ों इंसानों ने इसको सुना है। तो ये अल्लाह ने वादा दुनिया के अंदर पूरा कर दिया, इन्ना दानु नज़ल न ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। हिफाजत ऐसे की जाती है, हिफाजत ऐसे की जाती है। और उम्मत को तो ये हुक्म दिया, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुसा, अपनी नमाजों में दरमियान की नमाज जो है उसकी हिफाजत करो, सारी नमाजों की हिफाजत करनी है, मगर असर के वक्त के अंदर मशगूलियत ज़्यादा होती है। तो उम्मत को तालीम दे दी कि तुम इस नमाज से गाफल ना होना, इसलिए कि इसके अंदर वक्त कम है, है जी, जब गुरूब हो जाएगा तो वक्त निकल जाएगा, ये नमाज तुम्हारे से ज़ाया होने का ख़तरा था। अल्लाह जल्ला शानहू ने इस ख़तरे के पेश नज़र हमारी रहनमाई फरमाई कि असर की नमाज जो है इसकी ख़ास तौर पर हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला हमें इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मज़मून कुछ बयान कर रहा था, बात किसी तरफ चलेगी। कुरान की हिफाजत का महीना गुजर गया, हम खुशी नहीं मनाते, किसके जाने की खुशी नहीं मनाते, बल्कि किस बात की खुशी मनाते हैं, रमज़ान को पाने की खुशी मनाते। जो आदमी 20 रोज़े रखे वो कह देगा कि मैंने रमज़ान पा लिया, चलो जिसने 28 रखे वो कह देगा कि मैंने रमज़ान पा लिया, नहीं। जब हम 29 रोज़े रख लेंगे, चांद नज़र आ जाएगा, हाँ जी, तो हम ये कहेंगे हमने रमज़ान को क्या किया, पा लिया, हमने रमज़ान को पा लिया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो आज का दिन है ये रमज़ान को पाने की खुशी है, ना कि उसके जाने की खुशी है। बात को समझने की बात है, कितना कुरान पढ़ा, गया गया मुसलमान, दीन से दूर मुसलमान भी कुरान को इस माह के अंदर अपने सीने से लगाता है। और कम से कम कुरान से मोहब्बत करने वाले कैसे मोहब्बत करते हैं, ये मैं आने वाले जो लोग हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने उम्मत को कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने, अबू मूसा आयशरी अपने घर के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी वहाँ से गुजरे, ये आयशरी कबीले के सरदार हैं, तो ये अपने घर के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी के कदम रुक गए और खड़े होकर उनका कुरान सुनना शुरू कर दिया। जब तक अबू मूसा आयशरी कुरान पढ़ते रहे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उसका कुरान सुनते रहे। सुबह को जब अबू मूसा आयशरी नमाज के लिए आए तो अल्लाह के नबी ने उनसे मुखातब कर होके कहा कि अबू मूसा आयशरी, रात अगर तुझे ये पता चल जाता कि तेरा नबी तेरा कुरान सुन रहा है तो तेरा क्या हाल होता, तेरे क्या ख्यालात होते, तू क्या सुनता। आप जानते हैं अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है अपने सीने को चीर कर जब अपने लबों से आप तक आवाज़ पहुंचाता है, आपकी कानों की समात उससे खुश होती है, तो आप खुश होकर कहते हैं कि ऐ कारी कुरान, तूने ऐसा कुरान पढ़ा कि दिल खुश हो गया। अल्लाह के नबी अबू मूसा आयशरी से कहते हैं, अबू मूसा आयशरी, तूने ऐसा कुरान पढ़ा कि तेरा नबी तेरे लिए दुआएं करता। अबू मूसा आयशरी को दुआ दी और कहा कि मैं जब आयशरियों के घर के करीब से गुजरता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये अभी मूसा आयशरी का कबीला है, ये कुरान पढ़ना इनकी خوبصورتی ان کو اللہ جل شانہ نے لحن داؤدی دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی, تو یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. اچھا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, نہیں ہمارے نبی نے اس کی تعریف کی اچھا قرآن پڑھنے والوں کی, اور قرآن کی عزت صحابہ نے کس طرح کی. ہم تو 30 دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے, اللہ جل شانہ نے قرآن کے بھی 30 پارے بنائے. 20 رکوع ہوتے ہیں, اللہ کے نبی نے 20 تراویاں بنا دی ایک پارے کے اندر. ایک پارا سننا ہوتا ہے تراوی کا. مگر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ نے قرآن کی عزت کس طرح کی. میری ریکویسٹ ہے کہ صفیں پوری کر لیں, پیچھے آنے والے لوگ حضرات جو ہیں تھوڑا تھوڑا آگے, اب صفوں کو مکمل کر لیں, یہ صفیں اپنی جو ہے نا ان کو درست کر لیں کیونکہ وقت کم ہوگا. جب مجھے اشارہ ہو جائے گا کہ عوام الناس آ گئے ہیں تو میں انشاءاللہ تقریر کو بند کر دوں گا. جی بہرحال میں اپنی طرف سے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, میں تو قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح امت کی صحابہ کی تربیت کی اور ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں ایک بات, چھوٹی سی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں. پڑھانے والے بھی باعظم لوگ ہیں اور پڑھنے والے بھی کون ہیں, باعظم لوگ ہیں. مگر قرآن کی فضیلت کیا ہے, اس کے حافظ قرآن کا درجہ کیا بیان کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کسی ملت کے پاس, کسی قوم کے پاس, کسی مذہب کے پاس یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. مگر اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا اللہ جل شانہ یہ اکرام فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن حفاظ کو بلائیں گے اور ان کو اپنے پاس بلا کر کہیں گے کہ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ, زینہ چڑھتے جاؤ, جس طرح آپ سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کے اندر آئے ہیں تو کہیں گے اللہ جل شانہ کہ پڑھتا جا اور زینے چڑھتا جا, جنت کا جو مقام جہاں پر والناس ختم ہوگا وہ حفاظ کا مقام ہے. گویا کہ وہ جنت کے چودھری ہوں گے, وہ جنت کے نمبردار ہوں گے, وہ جنت کے سردار ہوں گے حفاظ. مگر یہی بات ختم نہیں ہوتی, اس کو یہ کہنے سے پہلے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ حافظ قرآن سے کہیں گے اے حافظ قرآن تجھے 10 ایسے لوگوں کی صفات کی سفارش کی اجازت دیتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, 10 آدمی تو اپنی چار سے چن لے, میں ان کو جنت دیتا ہوں. یہ حافظ قرآن کی, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اور بہت ساری قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ایک حدیث کے اندر فرمایا اچھا قاری قرآن پڑھنے والا اس کی نسبت کس طرح کی ہے, بے مثال مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی عام انسان یہ مثال دے ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں دے سکتا. میری بات کو دھیان سے سنیں, فرمایا کہ بعض قرآن کے قاری ایسا قرآن پڑھتے ہیں اس کی مثال سنترے جیسی ہے. اترجح کا لفظ بیان کیا. سنترا کیا ہوتا ہے, آپ اس کے چھلکے کو سونگے تو اس کے اندر عجیب خوشبو ہوتی ہے جو اور کسی پھل کے اندر نہیں ہے. کہ ہے چاولوں کے اندر آپ ڈال دیں تو چاولوں کے اندر اس کا چھلکا جو ہے وہ خوشبو دیتا ہے چاولوں کے اندر جو کوئی اور چیز نہیں دیتا. چاہے زعفران ڈال لیں مگر اس کا ذائقہ, اس کا مزہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مالٹے کے چھلکے کا ہو, سوکھا ہوا چھلکا. یہ ہم چاولوں کے اندر ڈال دیں, سبزے کے اندر ڈال دیں تو اس کی لذت بے اشتہا ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ خواہش کے ساتھ اس کو کھاتا ہے, چن چن کے کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن جو اچھا قرآن پڑھتا ہے उसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह संतरा है जी कि उसका खाना भी मीठा होता है और उसकी लज्जत भी जो होती है वो भी अच्छी होती है, उसकी तुर्शी भी अच्छी होती है। संतरे के अंदर तुर्शी कैसी होती है कि हल्की सी तुर्शी उस पर क्या होती है, मिठास गालब होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो उसकी समाज जो होती है वो भी रोशन होती है, दिल भी खुश होता है और अल्लाह की रहमत जो है वो उस पर नाजिल होती है। अच्छे कुरान के कारी की तलावत ये सब पसंद करते हैं हम, हमें अच्छा लगता है कुरान का पढ़ना, हमें अच्छा लगता है हदीसें, मगर दूसरी भी मिसाल दी। दूसरी मिसाल क्या दी, मैंने अर्ज किया था कि साहिब कह रहे हैं कि खड़े होकर आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, वैसे ही थोड़ा सा जहाँ पे आपको खाली जगह नज़र आए उसको पुर कर लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जो इंतज़ामिया की बात माननी चाहिए जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, क्योंकि तकबीर वगैरह तो होगी नहीं, साहब बंदी है वो पहले कर लें इंशाल्लाह। तो मैं हदीस बयान कर रहा था, तवज्जो फरमाएं आप, चंदा चंदा दे दें मस्जिद के लिए, इस अदारे के लिए, ये देखें हर साल इसमें खूबी नज़र आती माशाल्लाह। जो लोग मुआमिनीन हैं उनका ज़ौक देखकर नज़र आता है कि पिछले साल भी मैंने ईद पढ़ाई थी, उससे ये मस्जिद और भी रोशन नज़र आती है। तो ये भी एक हदीस है, उसको भी सुना देता हूँ। बरक मस्जिद के लिए नीयत से डालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू जन्नत को सजाते। जन्नत तो सजी सजाई चीज़ है, जन्नत तो ऐसी चीज़ है कि उसको सजाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसका नक्शा खींचा। क्या नक्शा खींचा, पहले वो हदीस मुकम्मल कर लूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन कारी कुरान पढ़ने वाला उसकी मिसाल संतरे जैसी है कि उसके अंदर मिठास भी होती है, उसके अंदर लज्जत भी होती है, उसके छिलके अंदर के अंदर खुशबू भी होती है। और बाज़ कारी कुरान ऐसा कुरान पढ़ते हैं कि उनके अंदर मिठास तो होती है मगर संतरे जैसी लज्जत नहीं होती। मिसाल किसके दी, इसके साथ दी, खजूर के साथ, कि जैसे खजूर खाने में मीठी है मगर इसके अंदर खुशबू नहीं होती। अल्लाह के नबी की बात देखे कितनी जामे। आगे हदीस लंबी है, बहरहाल उसको छोड़ता हूँ। ये मस्जिद की जो बात है कि अल्लाह जल्ल शानहू जन्नत को सजाते हैं, क्यों, इसलिए कि आप रमज़ान में मस्जिद को सजाते हैं। मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह के नज़दीक क्या हैं, महबूब चीज़ें हैं। जब आप मस्जिद को सजाते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिस आदमी ने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह जल्ल शानहू जन्नत में उसको महल देंगे, मकान देंगे, उसके लिए जन्नत देंगे। और यह भी फरमाया मन सलक तरीक यल्तमिसु फीहि इल्मा सहल अल्लाहु लहु भी तरीकन इलल जन्ना। जिस शख्स ने दीन के लिए कोई रास्ता आसान कर दिया, किसी मदरसे की मदद कर दी, किसी हाफ़िज़े कुरान की मदद कर दी, किसी को किताब लेकर दे दी, पानी का इंतज़ाम कर दिया, बिजली का बिल मस्जिद का, उसकी नीयत से आपने पैसे डाल दिए, पंखा चलेगा पता नहीं किसके पैसे से लगा है, पता है किसी को कि ये किसके पैसे से लगा है, मगर हवा सबको आएगी। तो जिस तरह इसकी हवा सबको लगती है, आपकी खिरात आपकी ज़कात जब आप मस्जिद को सजाते हैं तो अल्लाह आपके लिए जन्नत को सजाते हैं। ये सबसे ऊंचा मुकाम है उम्मत मुहम्मदिया का, ये मुकाम किसी को मिलने वाला नहीं है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अबू मूसा अशरी ने कुरान पढ़ा, अल्लाह के नबी ने सुना, अल्लाह के नबी ने सुना और उनकी समाअत की तारीफ की कि तूने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान को ये अजमत दी और इस अजमत की जिम्मेदारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत पर नहीं छोड़ी, खुद अल्लाह जल्ल शानहू ने 3 बार इन्ना बेशक हमने, नहनु इसका माना भी यह है कि मैंने, हमने, नज़लना हमने ही इसको उतारा। कितने सालों में उतारा? 23 साल। कितने सालों में उतारा? 23 साल में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी 23 साल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी कितनी है? 23 साल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बात को समझो। 23 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि कोई सहाबी इस रवायत को बयान नहीं करता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज नमाज छोड़ी। हम छोड़ते हैं, हम मस्जिदों को ईद पढ़ने आते हैं, बस उसके बाद अल्लाह हाफिज, रमजान करते हैं उसके बाद अल्लाह हाफिज। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद की आबादी, अकीमुस्सलाह का लफ्ज, आप घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे ठीक है, आपने फर्ज अदा कर लिया, मगर अकीमुस्सलाह का मतलब यह है, कुरान ने यह नहीं कहा नमाज पढ़ो, यह कहा कायम करो। तो कायम कहाँ पर होती है? मस्जिद के अंदर। कहाँ पर कायम होती है? मस्जिद के अंदर। जब इमाम के पीछे मुक्तदी ये कहता है कद कामतिस्सलाह जी, तो ये नमाज को हम वहाँ पर मस्जिद के अंदर कायम करते हैं। और इसीलिए ये मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह को कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब है। जिस मस्जिद के अंदर आप बैठे हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मस्जिदों की लाइफ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी शाम पड़ेगी, ज़िंदगी ऐसी है सुबह होती है कि नहीं होती है जी। कितने मुसलमान जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे दोस्त साथी थे, आज नहीं है, अल्लाह साहब की मगफरत करे, मगर मैं ये बात कहता हूँ कि मुसलमान को सोचना चाहिए कि जो दीन अल्लाह ने हमें दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिल्लत के लिए जो चीज़ बख्शी है उसका ध्यान करना हमारे लिए ज़रूरी है, हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें, यह बात ज़रूरी है। अपने बच्चों की हिफाजत करना यह ज़रूरी है, अपनी बच्चियों की हिफाजत करना यह ज़रूरी है, बल्कि सबसे बड़ा सदका यह है कि आप अपने बच्चे को दीन पर लगा देंगे, जब तक ये दीन की बात करेगा, नमाज पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, किसी को हदायत की बात सुनाएगा। अल्लाह के नबी ने वादा फरमाया कि जिसने औलाद की अच्छी तरबियत कर दी, अल्लाह जल्ल शानहू इस बंदे को कब्र के अंदर इसका अजर अता करें। ये औलाद की तरबियत है, अपने घर की बात है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों की मोहब्बत किस तरह बयान की। अल्लाहु अकबर। मस्जिदें, मस्जिद नबी की क्या है? बेटियाँ हैं। मस्जिद नबी क्या क्या है? क्या है? बेटियाँ हैं। और मस्जिद नबी कौन सी मस्जिद है? जहाँ पे अल्लाह के नबी ने सजदे किए, सुजूद किए, क़याम किए। एक दिन अल्लाह के नबी अपने घर से निकले, एक सहाबी हैं, उनका नाम है रबिया बिन काब असलमी, ये खड़े हैं, इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद के लिए पानी पेश किया, मिसवाक पेश की, और मामूल बन गया कि तहज्जुद का पानी देते थे, मिसवाक देते थे। एक दिन रहमत का दरिया मौज में आया तो अल्लाह के नबी ने कहा, काब रबिया मांगो, क्या मांगते हो, मांग लो आज, क्या चाहते हो। मिजाज सनाज थे सहाबा कि जो अल्लाह का नबी बात कहता है वो पूरी हो जाती, सोने का पहाड़ मांग लेते तो कायनात के वाली जो हैं वो अपने अल्लाह से कहते इसको पहाड़ सोने का दे दो तो सोने का पहाड़ मिल जाता। मगर सहाबी तरबियत याफ्ता थे, कहा कि या रसूलुल्लाह, हाँ एक चीज़ मांगता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मांगो। कहा, मा राफ़क्त फिल जन्ना, या रसूलुल्लाह, जो मुकाम आपका जन्नत का है, जन्नत में आपका साथी बन जाऊं, यह चीज चाहिए। क्या चाहिए? जन्नत में आपका साथी बन जाऊं। ये जो लोग, एक फितना पैदा हो चुका, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर इस दौर के अंदर हम लोग मिंबरों मेहराब से ये बात नहीं कहेंगे तो हम मुजरम हैं, हम इस जुर्म के अंदर शरीक हैं। मगर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं उसको, मां क्या मांगता है, वो साहबी क्या कहता है, माराफ़क्त फिर जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है रबिया, तुझे जन्नत मिल जाएगी, और भी मांग लो, क्या मांगते हो। मिजाज शनाते नबूवत साहबी तो कहते हैं या रसूलल्लाह बस यही काफी, हस्बुक या रसूलल्लाह, इतनी बात ही काफी है कि आपकी रफाकत नसीब हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रबिया ज्यादा सजदों से मेरी नुसरत करो, मेरी मदद किससे करो, ज्यादा सजदों से मेरी क्या करो, नुसरत करो। आज लोग कहते हैं सुन्नत कोई चीज नहीं, सुनते कोई चीज नहीं, सिर्फ फर्ज पढ़ लो, फजर की सुनते पढ़ लो, तीन वितर पढ़ लो, ये जरूरी है, और सुन्नतें जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी साहबी को क्या तालीम दे रहे हैं, फर्ज नमाजों पढ़ा करो, क्या कह रहे हैं, सजदों से मेरी, ज्यादा सजदों से मेरी क्या करो, मदद करो। ज्यादा सजदे, बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, बात सुन ले, बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, फर्ज नमाजों के अलावा जिसने फर्ज नमाजों की सुन्नतें, जो 12 सुन्नतें हैं, मैं गिन देता हूं जल्दी जल्दी, फजर से पहले 2 सुनते, जोर से पहले 4 सुनते, जोर की बात की 2 सुनते हैं जी, मगरब के बाद की 2 सुनते, ईशा की बात की 2 सुनते, 12 होगी। ये 12 रकत जो शख्स पढ़ेगा, कौन फरमाती है, बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती है, फकद वाजब अल जन्ना, अल्लाह के नबी ने कहा उस पर जन्नत वाजिब होगी। ये सुन्नतें हैं। आज जो कोई बड़े, हर कोई पगड़ी बांधकर, दाढ़ी बढ़ाकर ये कहे कि मैं मुबल्लिग इस्लाम हूं, वो मुबल्लिग इस्लाम नहीं है, वो दीन को ऐसे तरीके से ज़िबा करना चाहते हैं कि जो उम्मत को सुन्नत से दूर करना चाहते हैं। ये बीमारी लग गई हमें। मगर एक बात पूरी होनी है, एक बात अल्लाह के नबी की सच्ची होनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा कि जब फितने इस तरह दीन के खिलाफ उठेंगे, जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरते हैं, इस तरह फितने जो है ये इस्लाम पर नाजुल होंगे, बिखरेंगे फितने, रोज नया फितना। इससे बचना है, इससे बचाव के तरीके हैं, वो क्या है, हम अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लें। आज वादा करें ईद के दिन कि हम अपनी नमाज, जी ठीक ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह, तो हम अपनी नमाजों को ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने मन को ठीक कर लें। मेरे भाइयों, ये इरादा कर लो, इरादा कर लो, आपके घरों में बरकत होगी, अल्लाह के घरों को आबादी का तहिया कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आएंगी। व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो माफी चाहता हूँ। साहब बंदी करेंगे, साहब बंदी कर लें, ईद का तरीका सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद ईमेल लगा, सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद 3 तकबीरात जायद होंगी, फिर हम हाथ बांध लेंगे, मैं किरात करूंगा, फिर रुकू और सजदा होगा, फिर अगली रकात के अंदर किरात होगी, रुकू से जाने से पहले तीन तकबीरात जायज होंगी, चौथी रुकू पे इंशाल्लाह हम चौथी तकबीर पे रुकू करेंगे। यही ईद का तरीका है, छः तकबीरात जायद हैं जी, नमाज ईद वाजिब, इसकी नियत कर लें पीछे इमाम के। बस अल्लाह जल्ल शानुहू हमारे घरों में बरकत नसीब फरमाए। नमाज के बाद मैं दुआ करूँगा और खुतबा होगा, खुतबा सुनना भी वाजिब है। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें फरमाए। सब बंदी हो गई भी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا رب العالمين. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن ذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا إله العالمين يا رب العالمين حق غالب فرما. يا الله باطل کو مغلوب فرما. يا الله اہل اسلام کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں, قرآن سنا ہے پڑھا ہے. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ روئے زمین پر جتنے بھی مسلمانوں نے تیرے دین کی عظمت کے لیے یا اللہ دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ جو یہاں مسلمان پٹ رہے ہیں یا اللہ ان کی اپنے غیب سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے الہ العالمین ان کی مدد فرما. या अल्लाह मुसलमानों में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा, या अल्लाह कश्मीर के, फ़लस्तीन के, या अल्लाह शाम के, तुर्की के, जितने भी मुसलमान मुसीबतों में घिरे हुए हैं, या इलाहल आलमीन उनकी मदद फरमा। इलाहल आलमीन मुसलमानों को बाहम इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा। इलाहल आलमीन हमारे घरों में बरकात नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन जो लोग मज़ार से अरबिया मसाजद की या अल्लाह खिदमत करते हैं, दीनी मराकज की खिदमत करते हैं, या अल्लाह उनके घरों में बरकात नसीब फरमा। या अल्लाह उनके जानो माल में बरकात नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी हमारे भाई तेरे पास चले गए हैं यानी दुनिया छोड़ गए हैं, इलाहल आलमीन जितने भी हमारे अजीज़ अकारब, जितने भी मेरे भाई मस्जिद के अंदर हैं, सब के बहन भाई जितने भी दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी मगफरत, या अल्लाह उनकी मगफरत फरमा। या इलाहल आलमीन उनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमा दे। या अल्लाह उसकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमा दे। या इलाहल आलमीन हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि तुझसे इल्तिजा कर सके, मगर जैसी भी टूटी फूटी बातें हैं या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह तू कबूल मानने वाला है, हमारी बात मानने वाला है। इलाहल आलमीन हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो भूल कर जानबूझ कर इस तरह के जितने भी हमसे गुनाह हुए, या इलाहल आलमीन सब की माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हमने किसी का हकूक मारे हों, या अल्लाह हकूकुल्लाह तो तू माफ़ कर देता है। या अल्लाह हमें अपने भाइयों के हक अदा करने वाला बना दे, अपनी बहनों का, अपने ख़ानदान का हक अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। इलाहल आलमीन जितने भी मेरे भाई इस मस्जिद के अंदर आए हैं उनकी दिली ख्वाहिशें तमन्नाएँ पूरी फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफाए कामला आजला मुस्तमिर अता फरमा। इलाहल आलमीन जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, इलाहल आलमीन सब की दुआएं, या अल्लाह जो उनकी दिल की ख्वाहिशें तमन्ना है, या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह दीन पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। हमारे या अल्लाह जितने भी बिगड़े हुए बच्चे हैं, या अल्लाह उनको साले ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह माँ बाप का फरमा बरदार बना। इलाहल आलमीन हमारे घरों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद की जो तरक्की है, इसमें जितने भी लोगों ने हिस्सा डाला, या अल्लाह इसमें बरकत नसीब फरमा। इलाहल आलमीन मेरे जितने भी भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह उनकी मोहब्बत में इजाफा फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती मकबूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सेंट्रल मास्क की बुनियाद रखी थी, या अल्लाह, या अल्लाह उनकी कब्र को, या अल्लाह ताहद नज़र वसत दे। इलाहल आलमीन ये ग्लासगो के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा। इलाहल आलमीन ग्लासगो के मुसलमान परेशानियों में, या अल्लाह मुब्तला, या अल्लाह कोई भी किसी के घर में परेशानी है, या अल्लाह उसको आसान फरमा दे। या इलाहल आलमीन तू इसे बहुत ही, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, या अल्लाह तेरे करम की दरख्वास्त करते हैं। इलाहल आलमीन हमारी दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह जानो माल कारोबार में तरक्यात नसीब फरमा। इलाहल आलमीन ऐसा माल दे जो तेरे रस्ते में खर्च करने का जज्बा रखते हों। इलाहल आलमीन ऐसे मुसलमानों की हिफाजत फरमा जो तेरे दीन के मराकज की हिफाजत करते हैं, तेरे दीन की हिफाजत करते हैं। मुसलमान तुर्की के अंदर जितने भी शाम के अंदर, या अल्लाह परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहल आलमीन हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमईन। मेरा खुतबा सुने भाई, खुतबा बैठ कर सुने। खुतबा सुनना ये वाजिब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मुहसिनिद दयान ذل فضل والجود والإحسان ذل كرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ما ملع المقران وتعاقب المروان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه أوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته قال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوفي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبها في الخطبة التي قبله نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أزعاف الخطبة يكسط التكبير في الخطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہم اشفی مردانہ. حدیث میں آتا ہے دو خطبوں کے درمیان جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کر دے, تو بیماروں کی شفا کے لیے دعا کر دی اللہ تعالیٰ, آمین کہہ دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم إنا نعوذ بك من التعني والتعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما تخاف وتحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله تعالى على محمد وآله وسلم اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا وأمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله أهانه الله إن الله يأمر بالعدل واليسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان الله. میری طرف سے تمام احباب کو عید مبارک.
جی ہاں جی بالکل.